ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
तो डॉक्टर चैताली का प्रश्न यह है कि शांति का वातावरण अस्पताल में कैसे बनाए रखें और शांति का महत्व क्या है. व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीस शांति. ध्वनि जो है ना ध्वनि इसको हम आवाज कहते हैं. वो आवाज ये सारे जो निर्माण भगवान ने किया है उसका उगम है. ध्वनि एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से यह सृष्टि निर्माण हो गई है. समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन सबसे पहले ध्वनि का निर्माण हुआ उसके बाद में बाकी सारे तत्व निर्माण हुए. तो ये ध्वनि जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने उसको उनको प्राप्त करने का मार्ग बना दिया है. इतना ही ध्वनि महत्वपूर्ण है. इसलिए इस युग में भगवान ने अपने आप को भी उनके नाम के ध्वनि में अवतरित किया है. कली काले नामरूपे कृष्ण अवतार. भगवान को कलयुग में ध्वनि अवतार कहा गया है. वो ध्वनि के रूप में आए हैं, साउंड के रूप में आए हैं. जो साउंड हम पुकार रहे हैं कृष्ण अल्लाह उसमें वो उपस्थित हैं. ये व्यवस्था भगवान ने खुद की है. हम कहते हैं इसलिए नहीं किया है. भगवान ने स्वयं व्यवस्था किया है कि कलयुग में मैं अपने नाम के रूप में आऊँगा. और नाम का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर लिखा है मैंने समझो सुमन. तो कुछ वैल्यू नहीं उसका. जब मैं सुमन करके पुकारूंगा तब सुमन नाम की व्यक्ति मुझे देखेगी. क्या है कुछ काम है. तो नाम का महत्व उसको पुकारने में होता है लिखने में नहीं होता है. लिखा रखा जो घर में आग लग रही है जो कोई लोग सोया हुए हैं तो आप बोर्ड दिखाएंगे आग लग रही है जल्दी उठ के भागो. भागेंगे आप को आवाज़ करना पड़ेगा धड़ 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 उठो 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 भागो भागो. साउंड करना पड़ेगा आवाज़ देना पड़ेगा तब भागेगा वो. जब आग लगेगी तब आप बोर्ड लगाएंगे यहाँ पर जल्दी यहाँ से भाग जाओ आग लग रही है. तो सोता आदमी सोता ही रहेगा लेकिन आवाज़ करेंगे तो उसका आप जगा सकते हो और जगा के उसको बचा सकते हो. तो आवाज़ जो है ना वो हमको सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है बहुत. जब आप किसी असुरक्षित घटना में जाते हो या कोई डेंजर में जाते हो तो क्या करते हो चिल्लाते हो है ना. चिल्लाकर आवाज़ निर्माण करते हो तब जाकर लोगों का ध्यान आपके ओर होता है कुछ हो रहा है इधर या किसी का चेन कोई खींच रहा है रस्ते में कोई लड़का लड़की की छेड़ निकाल रहा है तो क्या करते हैं, वो चिल्लाते हैं, है ना। तो किसी का ध्यान अगर हमारी ओर आकर्षित करना है तो सबसे पावरफुल जो तरीका है वो है आवाज़। इसलिए भगवान ने भी उनकी ओर अपना ध्यान जाने के लिए उनका नाम दिया है। जब हम पुकारेंगे उनका नाम तब वो भी हमको देखेंगे, हमारा ध्यान भी उनकी ओर जाएगा और उनका ध्यान भी हमारी ओर आएगा। ये हो गया दिव्य ध्वनि, जिसको पवित्र ध्वनि कहते हैं, जो होना चाहिए, है ना। झगड़े का ध्वनि जो है होना नहीं चाहिए। झगड़ा हो रहा है किसी का तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कोई झगड़ रहा है तो आपको अच्छा लगता है। आपके दो दुश्मन भी झगड़ते रहेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको डिस्टर्ब हो जाएगा इनकी आवाज़ से और इनकी भावना से, क्योंकि आवाज़ जो है वो आपकी भावनाओं को लेकर बाहर निकलता है। कोई रो रहा है तो आपको उसकी फ़ोन पे भी अगर आप सुनेंगे रोते हुए किसी को तो आपको तकलीफ होगी। अभी मैं जब आ रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि सर आपको मुझे मिलना है, और फट करके रो पड़ी। तो मैं सोच रहा था उसको सोमवार को मिलूँ, लेकिन जिस तरह से रो पड़ी तो मैं बोला अभी 4:30 को मिलता हूँ। क्या समझा आपको इसमें? जिस तरह से वो बात बताई गई, जिस भावना से, उसका परिणाम हृदय में हुआ। और आप लोग भी, हम लोग भी ऐसे रहते हैं, हमारे दुश्मन लोग भी जूझते रहेंगे तो उनका ध्वनि झगड़े का जो है, जो आगे पड़ोसी में पति पत्नी रोज़ झगड़ा करते हैं, मारा मारी करते हैं, कभी आवाज़ बर्तन फेंकने का आता है, कभी बोतल फूटने का आवाज़ आता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आपको खुद नींद नहीं आएगी, अगले बिल्डिंग में चल रहा है लेकिन आपको यहाँ पर अस्वस्थ रहेगा। बच्चा जोर से रो रहा है और कोई उसको मारने का आवाज़ आ रहा है, बच्चा और जोर से रो रहा है, तो वो ध्वनि से आप लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। तो एक ध्वनि है पवित्र और एक ध्वनि है अपवित्र, है ना। अपवित्र ध्वनि जो है वो हृदय को डिस्टर्ब करती है, शांति को भंग कर देती है। तो हमें साइलेंस की अपेक्षा की गई है, मौन। अभी आपको बताता हूं मौन की व्याख्या क्या है। आपको लगता होगा मौन मतलब शांत रहना, मौन का मतलब केवल शांत रहना नहीं है, मौन का मतलब है केवल भगवान के बारे में बात करना, उसको सच्चे मौन की व्याख्या की गई है। आप मौन हो लेकिन मन में आपके लड्डू फूट रहे हैं कि शाम को जाके शराब पीऊंगा, उसको गाली दूंगा, उसको तारीफ करूंगा, उसको चीट करूंगा, तो वो मौन से मतलब क्या है? खाली सन्नाटा है, उसको मौत नहीं कहते। मौन का और सन्नाटे के अंदर डिफरेंस है ना। तूफान आने के पहले भी सन्नाटा रहता है सब जगह पर, पता है, अचानक तूफान आ जाता है तो हम सन्नाटे की बात नहीं कर रहे हैं, मौन की बात कर रहे हैं। मौन की बात, मौन का अर्थ यह है कि मन में कोई विकार नहीं है, कोई बुरे विचार भी नहीं है, आनंद के विचार है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर केवल भगवान की सेवा के लिए बात करता है तो वो सच्चा मौन है, लेकिन जब मुंह खोलते हैं और भगवान के अलावा बातें करते हैं, एक बात है कर्तव्य की, यानी कि आप ड्यूटी कर रहे हो, कुछ पेपर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पेशेंट को एडमिट करना है, क्या नाम है आपका, वो बातें बेफजूल की बातें नहीं है, वो हमारे कर्तव्य की बातें हैं। आपका जो काम है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो वो आप कर रहे हो, ये साउंड सिस्टम ठीक करो, इधर से वहाँ लगा दो, किताब लेके आओ, ये करो, पेशेंट का नाम किधर है उसको वहाँ से वहाँ डिस्चार्ज करो, वहाँ ऑपरेशन में लेके जाओ, ये सब बातें डिस्टर्ब करने वाली बातें नहीं हैं। और दूसरी बात है भगवान के विषय की बातें जो अभी हो रही है, इसके अलावा जो बातें होती है, साड़ी कौन सी पहनी है, कहाँ से लाई थी, वो सब्जी कहाँ से लाया, वो तो सस्ती मिलती है, ये मिलती है, वो मिलती है, जो ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें दुनिया को, दुनिया में रहने के लिए और जीवन चलाने के लिए आवश्यक होती है ना। लेकिन कुछ बातें अधिकतर हम जो करते हैं दिन भर में वो नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा काम। कैसे समझेंगे आप कि हमारी बातें बेकार है? आप खाली इतना सोचो कि ये करने से, ना करने से कुछ नुकसान होगा क्या? आंसर आएगा कुछ नुकसान नहीं होगा, तो मतलब वो बेफजूल की बातें हो गई। सिंपल व्याख्या है उसकी, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। आप जो भी बोल रहे हो वो आवश्यक है कि अनावश्यक है, इसकी एक ही व्याख्या है। अगर वो ना करने से नुकसान होगा तो आवश्यक है, और ना करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बेकार की बातें हो। शास्त्र में ऐसा लिखा है, खास करके इन बिब्लिकल साइंस यानी कि जो क्रिश्चियन लिटरेचर है उसमें ऐसा कहा गया है कि मुंह तब खोलना चाहिए जब जरूरत हो, टॉक ओनली व्हेन एसेंशियल। और एक जर्मनी के संत थे सेंट फ्रांसिस, जर्मनी में एक जगह है असीसी, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति को 24 घंटा भगवान के विषय में प्रचार करना चाहिए। तो आपको क्या लगेगा, 24 घंटा उसको बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान के बारे में बोलते रहना चाहिए? नहीं, वो कहते हैं कि 24 घंटा हर एक व्यक्ति को भगवान के विषय में प्रचार करते रहना चाहिए, लेकिन बोलना तब चाहिए जब जरूरी है। अरे ये तो दोनों उल्टी बातें कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब 24 घंटे आपको व्यवहार ऐसा करना है, बर्ताव ऐसे करना है, वागायचं असं है कि लोकांना तुमच्या वागण्यातूनच प्रेरणा मिळेल, आणि बोलायचं किंवा जेव्हा गरज वाटेल तेव्हा, जब बोलने के बिना काम नाही होगा तब बोलना है, नाही तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो कंठ है ना, ये मनुष्य को केवल दिया गया है ना, बाकी कुत्ता बिल्ली को भी कंठ दिया है, लेकिन वो बोल सकते हैं क्या? खाली आवाज़ करते हैं, कोई टों टों करेगा, कोई कौं कौं करेगा, कोई कुकू करेगा, बस इतना ही है, उसके आगे कुछ नहीं। या तो ऐसा पंछी बोलेगा, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी भाषा है, एक नहीं हजारों भाषाएं हैं, और हजारों भाषाओं में वो कुछ कहता है किसी को, या कविता लिखता है, या गाता है, या क्या क्या होता है उसके अंदर, आवाज़ ऊपर नीचे करके, गुस्सा, कभी प्रेम, कभी कुछ कुछ व्यक्त करता है वो। तो मनुष्य को कंठ दिया है भगवान ने, है ना, लेकिन क्यों दिया है? ताकि वो भगवान का नाम उससे लें और भगवान का गुण गौरव करें, इसके लिए उसको दिया है, और किसी कार्य के लिए नहीं दिया है। लेकिन हम लोग भगवान का गुण गौरव और भगवान का नाम स्मरण, इसके बिना बाकी सब कुछ करते रहते हैं इस कंठ के द्वारा। और यही कंठ है जिसका इस्तेमाल हम जैसा करेंगे उस व्यक्ति को आकर्षित करेंगे। नंबर वन, अगर हम बेफजूल की बातें करेंगे तो काल को आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग। जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक जब बारिश होती है तो क्या होता है, सब डराव 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 सब जगह होता है। एक्चुअली क्या करता है मालूम है वो डराव डराव क्यों करता है? जब बारिश आती है वो मादी को बुलाते रहता है संबंध करने के लिए, वो आवाज़ से वो फीमेल जो है मादी उसको अट्रैक्ट करते रहता है। लेकिन वो प्रक्रिया में क्या होता है, वो सांप को भी बुलाता है, वो बुला रहा है अपनी बीवी को, लेकिन आ रहा है सांप। तो बेफजूल की बातों को मेंढक के डराव डराव करने जैसा तुलना की गई है। जब बेफजूल की बातें करते हैं तो हम काल को हमारे पास बुला रहे हैं, मृत्यु को हमारे पास बुला रहे हैं, यमदूत को हमारे पास बुला रहे हैं। और जब हम भगवान को पुकारते हैं और भगवान के नाम को पुकारते हैं, भगवान का गुणगौरव करते हैं, तो यमदूत को हम दूर भगा रहे हैं, काल को भी दूर भगा रहे हैं। ये जीवन का सत्य है, आपको जचे या ना जचे, ये सत्य यही है। इसलिए हमारे जबान, हमारा कंठ का जो उपयोग है वो केवल ज़रूरत की बातें करने के लिए, जो आवश्यक है जीवन चलाने के लिए, और बाकी सब समय भगवान के विषय में उपयोग करने के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए उसका। अभी इसमें आता है एक शोर, जैसे कोई शादी हो रही है तो टै 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 ढंगा 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 सब कुछ ट्यू 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 बजाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, शोर करते हैं, फटाखा फोड़ते हैं, है ना। उससे बहुत लोगों को डिस्टर्ब होता है, पंछी लोग कभी कभी डर के मारे मर जाते हैं जब कोई भयंकर म्यूजिक बजता है। दिवाली के समय कुत्ते पागल हो जाते हैं, मालूम है आपको, पेपर में पढ़ा होगा आपने, कुत्ते बिल्लियाँ पागल हो जाते हैं, कभी कभी मर भी जाते हैं, कई पंछी ऐसे ही पेड़ से गिर जाते हैं आवाज़ से, केवल जो प्राकृतिक आवाज़ नहीं ना। भगवान ने कहीं फटाका का इंतजाम नहीं किया है, भगवान ने खाली कोयल के इंतजाम किया है, तोता का इंतजाम किया है, वो नेचुरल आवाज़ है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता किसी का। लेकिन शोर हम लोग पैदा करते हैं। और आप देखिए कभी भी मनुष्य का इतना शोर कोई नहीं करता है, कुत्ता भी नहीं करता है उतना जितना मनुष्य करता है। देखो कभी सोसाइटी की मीटिंग होती है तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि आज वो सोसाइटी में मीटिंग चल रही है। किसी घर में बैठ के अपना आँख बंद करके बोल सकते हैं कि आज इनका एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है, क्योंकि केवल साल भर का जो गुस्सा रहता है ना उसको निकालने के लिए वो मीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज शोर मचाते हैं उधर। तो शोर केवल सबसे ज़्यादा मनुष्य करता है, कोई पंछी प्राणी कोई तकलीफ वाला शोर नहीं करता है। बोलो जब पंछी बोलता है तो आपको खुशी होती है, मन में शांति का अनुभव होता है। ये सब मैं इतने बता रहा हूँ क्योंकि हमारे हमको सबको ये ध्वनि का तत्व जो है ना वो पता होना चाहिए कि ध्वनि क्या चीज़ है, ध्वनि का महत्व क्या है, ध्वनि का परिणाम क्या होता है। आप अगर डिस्को म्यूजिक पेड़ों के सामने बजाएंगे ना, बजाते रहेंगे ना, तो उनकी बढ़त खत्म हो जाती है, वृद्धि खत्म हो जाती है, बढ़ेगा ही नहीं प्लांट वो। और तुलसी के पास अगर बहुत शोर मचाएंगे ना, तुलसी तुरंत शरीर त्याग देगी, खत्म हो जाएगी। तुलसी के आसपास डिस्को चलाओ आप बहुत दिन तक, तुलसी बढ़ेगी नहीं आपकी, क्योंकि पेड़ों के लिए शांति का वातावरण चाहिए ताकि वो वृद्धि अपनी अच्छी तरह से हो सके, आप लोगों को ऑक्सीजन अच्छी तरह दे सके। शाम के बाद में कोई शोर नहीं करना चाहिए। और कलयुग के लोग क्या करते हैं, शाम के बाद ही शोर करना शुरू कर देते हैं, जितना लेट नाइट उतना उनको ज़्यादा जोर आता है शोर करने के लिए। डिस्को कभी होता है, दिन में होता है क्या, रात को ही होता है। इस तरह से जब अयोग्य समय पर ध्वनि निर्माण होता है तब सब जीवों का संतुलन बिगड़ जाता है, उनका भी साइकिल होता है ना, क्या दिन में। इसलिए हम लोग रात को पेड़ को हाथ नहीं लगाते हैं, उसका पत्ता नहीं तोड़ते हैं, फूल नहीं तोड़ते हैं, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं, रात को नहीं करते सब कुछ। रात को वो भी विश्रांति लेते हैं, हम भी विश्रांति लेते हैं। विश्रांति के समय विश्रांति, शोर के समय मतलब विश्रांति के समय शोर नहीं करना चाहिए, तब जीव का संतुलन बिगड़ जाता है और दुख की प्राप्ति होती है। अब हमारे हॉस्पिटल में आइए आप अभी, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, अभी हम लोग सब बैठे हुए, इतनी शांति है यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है, एक तरह से मन जो है ना वो हील हो रहा है। कुछ थका हुआ मन है, कुछ उद्वेगपूर्ण मन है, या कुछ पीड़ा है उसको, दुख हो रहा है, तो ऐसी शांति में वो शांत हो जाता है। और दूसरी बात है, बीमार आदमी यहाँ पर आता है, जैसे कि अभी समझो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको हेडेक हो रहा है, तो चमचा भी गिरेगा ना बीवी के हाथ से तो भी आपको परेशानी होगी, क्यों चमचा गिर गया हाथ से, थोड़ा संभाल के रखो उतना। फिर वो जो बर्तन निकालते समय बर्तन का आवाज़ आए तो भी दिमाग तकलीफ होती है, क्योंकि आप पीड़ा में हो उस समय, पीड़ा में जरा सा भी आवाज़ आए तो भी आपको तकलीफ होगी। तो अगर पीड़ा आपको ठीक करनी है तो शांति होना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपका, आपका हॉस्पिटल अगर मच्छी मार्केट के बाजू में है तो मरीज लोग जल्दी अच्छे होंगे कि लेट से अच्छे होंगे? क्या विचार है आपका? टाइम लगेगा। हाँ, जहाँ शोर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेफजूल की बातें हो रही है, वहाँ पर बीमार आदमी जल्दी अच्छा नहीं हो सकता। बीमार आदमी को अच्छा होने के लिए नंबर वन शांति चाहिए। अगर आपका अस्पताल बीच हाईवे पर है, हमेशा टैं 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 हाईवे सिग्नल ट्रैफिक जाम में आवाज़ होते रहता है, तो वहाँ पर अस्पताल में मरीज जल्दी अच्छा नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा ना, बचपन से हम देखते हैं, अभी तो लगाना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, हमारे बचपन में हर एक हॉस्पिटल के सामने नो नॉइज़ का वो चिन्ह हुआ करता था, साइलेंस प्लीज, ऐसा एक हॉर्न और उस पर क्रॉस, ऐसे हर जगह पर थोड़ी थोड़ी देर पे हॉस्पिटल साइलेंस प्लीज, हॉस्पिटल साइलेंस प्लीज, अभी लगाना बंद कर दिया लोगों ने। पुराने ज़माने में हॉस्पिटल के सामने वाहनों को हॉर्न बजाना मना था, उसको चालान चला देते उसके ऊपर, अगर हॉर्न हॉस्पिटल के सामने आके हॉर्न किया उसने तो उसका बाजू निकाल के उसका लाइसेंस लेके चालान काटते थे। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि मरीज लोग जहाँ भर्ती होते हैं वहाँ पर शोर नहीं होना चाहिए, शोर होने से मरीज का अच्छा होने की प्रक्रिया जो है वो देर से हो जाती है, वो जल्दी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें यहाँ पर शांति रखना है। और आप बताइए कि आज के ज़माने में सबसे बड़ा अशांति निर्माण होने का कारण क्या है? शोर का, हाँ, मोबाइल, दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि। सबसे बड़ा, आपको समझता भी नहीं कि आप शोर कर रहे हो, इतना वो ऐसा है, इतना तकलीफ है उसका। आप जब मोबाइल लेकर बात करते हो तो आपका 78% अटेंशन जो है ना, ध्यान, वो दुनिया से हट जाता है और मोबाइल के अंदर घुस जाता है जिससे बात कर रहे हो। फिर वो आपको समझ में आता नहीं कि आप कहाँ खड़े हो और कहाँ चल रहे हो और कितनी जोर से बात कर रहे हो। आपको बताना पड़ता है, प्रभु जी आप बहुत जोर से बात कर रहे हो, अच्छा सॉरी सॉरी। इतना आदमी गुम हो जाता है उसके अंदर। और ड्राइविंग करते वक्त बात करेंगे तो 78% गया उधर अटेंशन, 22% ही बच गया, तो मरने की संभावना ज़्यादा है अगर ड्राइविंग करते समय बात कर रहे तो। और रोड क्रॉस कर रहे तो, रेलवे की पटरी क्रॉस कर रहे तो, हाँ सीधे यमलोक, डायरेक्ट टिकट, बीच में कोई हॉल्ट भी नहीं, फास्ट ट्रेन एकदम, ऐसा है। तो सबसे आजकल का शोर का कारण मोबाइल है, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल अस्पताल में नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो गंदे काम होते हैं वो मोबाइल के माध्यम से होते हैं। किसी को बॉम्ब डालना है, किसी को कुछ चोरी करनी है, किसी को कुछ योजना बनानी है, बैंक में डाका डालना है, तो सारे फ़ोन पे बातें करके करते हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि हम यहाँ पर मरीज को बीमारी से ठीक करने के लिए आए हैं, इसलिए भगवान का नाम यहाँ पर गूंजता है। क्योंकि ये भगवान का नाम जब गूंजता है ना, शोर नहीं होता इससे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो पीछे से बज रहा है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसका मन विचलित नहीं हो रहा है, उद्विग्न नहीं हो रहा है। वो इतना ऐसे ऐसे कोई प्रेम से हमारे शरीर पे हाथ घुमा रहा है, ऐसे प्रेम से, जैसे माँ अपने बच्चे के शरीर पे ऐसे सोते हुए बच्चे को ना बड़े प्रेम से ऐसे दुलारती रहती हो, वैसे लग रहा है। क्योंकि वो भगवान का नाम है, वो गाली गलौज का रिकॉर्डिंग नहीं हो। जब गाली गलौज रिकॉर्डिंग करेंगे समझो, एक घंटा गाली देते हैं और वो बजाएंगे 24 आवर्स, तो कैसा लगेगा आपको, कैसा वातावरण होगा? अच्छा साउंड, हाई फाई साउंड सिस्टम में वो गाली का रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रिकॉर्डिंग किया है आपने, और वो आप चला रहे हो, तो कैसा होगा आपके मन में? हमेशा डिस्टर्बेंस बना रहेगा, क्योंकि शब्द में शक्ति होती है, किस भावना से उसको बोला गया है। इसलिए अस्पतालों में काउंटर पे या वार्ड के नर्सिंग स्टेशन पे, फार्मेसी में, आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में, कहीं भी शोर नहीं करना चाहिए। शोर करने से और एक नुकसान होता है, आप जो काम कर रहे हो वो ध्यान हट जाता है उस काम से। आप कुछ लिख रहे हो कंप्यूटर में, कोई रिपोर्ट बना रहे हो और बाजू में कोई जोरों से बातें चल रही है, अरे शाम को कहाँ जाना है, अरे वो पिक्चर लग रही है, 6 बजे निकलेगी ना तू, मैं वेट कर रही हूँ, लेट मत करना, हाँ वगैरह वगैरह, तो आपका ध्यान हट जाता है उस काम से। ऑपरेशन थिएटर में अगर शोर मच गया तो क्या होगा? कुछ और चीज़ कट जाएगी जो कटना नहीं चाहिए है ना? आपका अटेंशन अगर आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं आप, इतनी छोटी सी जगह है वो, उसमें से आपको इतना छेद करना है 2 मिलीमीटर का, और किसने कुछ जोर से बोल दिया तो क्या होगा? बोल नहीं सकते क्या होगा। तो अटेंशन जहां जरूरी है वहां पर शोर नहीं होना चाहिए। रात को सोना है आपको, तो नवरात्रि के दिन सोते हैं क्या आप लोग? कितने लोग ऐसे पीड़ित हो जाते हैं, काम पे लेट आते हैं, बीपी उनका बढ़ जाता है, गुस्से में आके सुबह झगड़ा कर लेते हैं बीवी से, क्योंकि रात को नींद नहीं मिलती उनको। और नींद के लिए भी शांति होना आवश्यक है, चाहे वो गुंडा आदमी सो रहा हो या संत आदमी सो रहा हो, दोनों आदमी को सोने के लिए शांति चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है, सोचो आप इसके ऊपर। और नींद जरूरी क्यों है? क्योंकि नींद में हमारा शरीर दिन में जितना थक गया है वो रात को पूरा ठीक हो जाता है। दिन में कितनी धूल गई है, क्या कुछ गंदी चीज़ गई है, या कुछ अवजार शरीर के अवयव थक गए हैं, तो नींद में सारा चीज़ ठीक हो जाता है। कितने कैंसर के सेल बने हुए हैं वो नींद में शरीर उसको पकड़ता है और उसका डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है उसको। नींद चाहिए उसको, और उस नींद के लिए एक नंबर वन अंधेरा और दूसरा शांति, दो चीज़ की आवश्यकता है। अगर लाइट बहुत रहेगी तो नींद का जो हार्मोन है ना मेलेटोनिन, वो शरीर में पैदा नहीं होता है, वो अंधेरा होने के बाद ही पैदा होता है, अंधेरा होने के बाद में फिर वो चालू होता है, फिर नींद आती है। आपको कितनी भी नींद आती होगी और लाइट फुल ऑन रखें तो आपको इतनी गहरी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो जो केमिकल है वो पैदा नहीं होता है दिमाग के अंदर। और सेकेंड जो है शोर, वो शोर होगा तो नींद नहीं आती आपको। इसलिए शांति ये पीड़ामय स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हम केवल शांति की बात नहीं करते हैं, हम उस ध्वनि की बात करते हैं जो हमें मोक्ष की ओर लेके जाएगा। वो ध्वनि को समझना, वो ध्वनि को अपनाना और वो ध्वनि को जीवन का सर्वस्व बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। केवल शांति से बीमार ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हेल्थ है उसकी, मजबूती है, ताकत है, वो नहीं आएगी। केवल बीमार ठीक होना ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बीमारी ठीक करके भगवान को प्राप्त करना ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि अगर बीमार ठीक हो गया और भगवान की ओर नहीं जाएगा, दोबारा बीमार होकर वापस आएगा, दोबारा जन्म लेगा फिर बीमार पड़ने के लिए। बीमार क्यों पड़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे पास शरीर है। शरीर कहाँ से आया? भगवान को त्याग दिया तो इस दुनिया में जन्म लिया तो शरीर प्राप्त हुआ, इसलिए उस शरीर के अंदर बीमारी है, उस शरीर के अंदर बुढ़ापा है, उस शरीर को मृत्यु होने वाली है। तो कारण क्या है सब दुख का? वो शरीर है। वो शरीर की वजह से बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और दोबारा जन्म, इस शरीर की वजह से। आत्मा को जन्म नहीं होता है, आत्मा को बीमारी नहीं होती है, आत्मा को बुढ़ापा नहीं होता है, आत्मा अमर है, चिरंतन है, चिरंतन युवा अवस्था में रहती है। आत्मा की उम्र नहीं होती, शरीर की उम्र होती है। जब हम बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तो आप अपने शरीर का बता रहे हैं उम्र क्या है। ये शरीर का उम्र क्या है वो आप बताएंगे मुझे? आपकी उम्र नहीं बता सकते आप तो अमर हो, जन्म जन्मांतर से शरीर जन्म ले रहा है, लेकिन आप यात्रा कर रहे हो, आपकी कोई उम्र नहीं है। तो वो चिरंतन हमारा जो स्वरूप है उसको प्राप्त करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता है, और वो ध्वनि है भगवान के नाम का ध्वनि। वो जब आप अपनाएंगे तो शरीर का बंधन छूट जाएगा, आप मोक्ष प्राप्ति करेंगे और मोक्ष के बाद में भगवान की प्राप्ति करेंगे। मोक्ष भी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर, सब लोग मोक्ष के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप बोले मोक्ष भी, मोक्ष यानी जेल से बाहर निकलना, लेकिन जेल के साथ बाहर निकलने के बाद कहाँ जाओगे आप बताओ? कहाँ जाओगे? कि रोड पे ही घूमेंगे? आपको जेल में डाला गया है, 50 साल जेल में रहे आप, फिर छूट गए, फिर जेल के दरवाजे से बाहर आ गए, फिर कहाँ जाएंगे आप? यस, कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे ना, कि रोड पे ही घूमेंगे। तो जेल से बाहर निकलना ये मोक्ष जैसा है, और घर पहुंचना मतलब भगवान के पास पहुंचने जैसा है। तो जेल से निकलने के बाद में लोग दोबारा गुनाह करते हैं तो कहाँ जाते हैं? वापस जेल जाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो जेल से बाहर आते हैं तुरंत किसी का पॉकेट मारते हैं, फिर पुलिस पकड़ती है, फिर अंदर कर देती है उनको, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर तो घर अपना है ही नहीं, किधर कहाँ रहेंगे। जेल में तो कम से कम 4 दीवारी है, रोटी मिलती है, थोड़ा पत्थर तोड़ना पड़ता है, लेकिन भोजन तो मिलता है ना। अभी इतना साल जेल में रहे, अभी अभी माता ने त्याग दिया, पिता ने त्याग दिया, भाई ने त्याग दिया, सब लोग ने बोला ये तो संबंध रखने लायक है नहीं, इसको भाई मत बोलो, बहन मत बोलो, कुछ मत बोलो, इसको त्याग दो। और त्याग देने के बाद में हनी के बाद जेल में गया हुआ है, जेल से छूट गया, अभी सब कुछ गुनाहों का सजा भी खत्म हो गया, तो बाहर आके सोचता है कि मैं करूँ क्या, अभी कुछ घर तो नहीं है। फिर वापस पॉकेट मारता है, पकड़ा जाता है, फिर जेल में जाता है। हमारे सबकी अवस्था ऐसी है। हम मोक्ष मोक्ष कहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है मोक्ष क्या चीज़ है। मोक्ष केवल जेल से बाहर निकलने जैसा है, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद आपको घर चाहिए जहाँ पर आप रह सकते हो, दोबारा जेल से बच के वहीं रह सकते हो। लेकिन अगर घर ही नहीं है तो मोक्ष का कोई मतलब नहीं है, आप दोबारा जेल में चले जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई? इसलिए जो लोग कर्म कांड करते हैं ना, यज्ञ करते हैं कि भाई ये दोष है हमारे कुंडली में, इसको निवारण करो, अरे ये तकलीफ हो रही है इसलिए मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अरे ये कुंडली में कुछ गड़बड़ है इसलिए उसको बार बार बीमारी होती है, उसका घर नहीं बन रहा है, ये शांति करो, वो गुण करो, वो होम करो, वो हवन करो। और बाद में सोचते हैं कि ये सब कुछ खत्म करके ना कर्म सब फिनिश करके एक बार मोक्ष मिलना चाहिए, लेकिन मोक्ष ये जीरो कॉन्सेप्ट है, शून्य। आप नेगेटिव से शून्य में आ रहे हैं, लेकिन शून्य को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, आपको पॉजिटिव में आना होगा। और वो भगवान की भक्ति है, और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको अलग से मोक्ष के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति के अंदर मोक्ष भी इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है उसको। इससे भगवान के भक्त जो होते हैं, जो भक्ति योग का आचरण करते हैं, वो अलग से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। वो पैकेज है पूरा, है ना। 1,000 रुपये आपने कमा लिए तो 100 रुपये का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? 100 रुपये का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऑलरेडी उसके अंदर, क्योंकि आपने 1,000 रुपये कमा लिया है। 100-100 रुपये की सारी समस्याएं छूट गई उसके अंदर। तो भक्ति में जीवन में हमको ये सीखना है, लक्ष्य जो है केवल जेल से बाहर निकलना नहीं है, लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति करना नहीं है, लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। भगवान क्या बोलते हैं, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परम मम। जब तुम इस दुनिया के जेल से छूट कर, नंबर वन, नंबर टू, मेरे पास जब पहुंचोगे तो दोबारा इस दुनिया के जेल में नहीं जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते, दोबारा नहीं आओगे आप। तद धामम परम मम, वो मेरा घर जो है ऐसा परम धाम है वो। इसको बाइबल में कहा गया है किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का राज्य कहा गया है उसको। वहां पर जो पहुंचता है वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आता है। और दोबारा दुनिया मतलब जेल है। कौन सी जेल है ये? त्रिगुणों की जेल है, दुखों की जेल है। यहाँ पर जो भी आता है वो कोई भी हो, उसको बूढ़ा बनना है, उसको बीमार होना है, उसको एक दिन मर जाना है, और वापस जन्म होना है। और जन्म और बुढ़ापा और बीमारी और क्या मृत्यु, ये चारों चीज केवल दुखदाई है। जन्म करते हुए जो रोना रोता होता आता है, बीमारी में भी रोता है, बुढ़ापा होने पर भी रोता है, मरने पर तो सब लोग रोते हैं, वो भी रोता है। ये चारों चीजें कोई खुशी की बात नहीं है। मरना चाहता नहीं कोई, फिर भी उसको मरना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, बार बार आके दुख होना पड़ता है। इसके छुटकारा करने के लिए मेथड क्या है? ध्वनि। कौन सी ध्वनि? भगवान के नाम की ध्वनि। तब उसका उच्चारण होगा और वो नाम गूंजेगा तो सारे दुखों का निवारण करेगा वो। वो कहे आदमी काला हो, गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, अनजान हो, हाँ हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, धनी हो, गरीब हो, सुंदर हो या कुरूप हो, अच्छे कुल के जन्म लिया हुआ हो या खराब कुल में जन्म लिया हो, भिखारी हो या धनी आदमी हो, सबके लिए एक ही उपाय है, वो है ध्वनि। भगवान का नाम एक ही उपाय है उसके लिए। वो द्वापर युग में भी वही उपाय था, कलयुग में भी वही उपाय है, सत्ययुग में भी वही उपाय था। ऐसा नहीं कि खाली कलयुग में है, कलयुग में वो उपाय प्रधान हो गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि बाकी युग में लोग तपस्या भी करते थे और यज्ञ भी करते थे और मंदिरों की पूजा भी करते थे, बहुत सारा काम करते थे, इसलिए वो इतना प्रधान नहीं था। लेकिन इस युग में कोई तपस्या नहीं कर सकता है, कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, कोई अच्छा आचरण नहीं कर सकता है, तो फिर वो प्रधान हो गया है। लेकिन है प्रधान सभी युगों में वो, नहीं तो राम का नाम लिखकर पर लिखे गए जो पत्थर थे वो द्वापर युग में त्रेता युग में डूबते नहीं थे, अगर नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता था तो। लेकिन आज से 2 युग पहले त्रेता युग में हनुमान जी ने पत्थर पर नाम लेकर छोड़ा तो वो समुद्र में भी तैर गए वो। और शुक्राचार्य सत्य युग में बलि को बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए यज्ञ तो कर रहा हूं, और यज्ञ में हम लोग ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं और ऐसा मंत्र बोलकर अग्नि निर्माण करते हैं, कितने महान होंगे वो। माचिस जलाते नहीं है वो, ठंडी का मौसम, बारिश का मौसम माचिस जलती नहीं है, और वो यज्ञ होता होगा कैसे? फिर वो घर से जाके कुछ लकड़ी जला के लेके आता है, फिर यज्ञ चालू होता है। लेकिन यज्ञ में ये ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग मंत्र बोलकर अग्नि उत्पन्न करते थे, उसका नाम था मंत्राग्नि। तो शुक्राचार्य बलि महाराज को समझा रहे हैं, बलि महाराज के लिए 100 यज्ञ किए ना उसने, बाद में वामनदेव आए, पता है ना आपको कथा। वो तो उस कथा में शुक्राचार्य अपने शिष्य राजा बलि को बता रहे हैं कि हम लोग सारा यज्ञ इतना कर रहे हैं, भव्य यज्ञ, लेकिन इसमें भी गड़बड़ होती है, इसमें भी त्रुटियां होती है, उच्चारण गलत करने से गलत काम होता है, गलत परिणाम होता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारा अगर ध्यान थोड़ा हट गया, 1008 मंत्रों में एक मंत्र में ध्यान हट गया तो उसका परिणाम अलग हो जाएगा। एक मंत्र अगर गलत से उच्चारण किया उसका श्लोक का, तो उसका परिणाम अलग हो जाएगा, वही मंत्र है वो, लेकिन उसका मीटर ऊपर नीचे हो गया तो उसका अर्थ अलग हो गया और उसका परिणाम भी अलग हो जाएगा। तो इस समय करना क्या है, वो समझा रहे अपने शिष्य को, बलि तेरे लिए मैं 100 यज्ञ करने जा रहा हूँ, लेकिन ये यज्ञ में जितनी भी गलतियाँ होती है, जितनी भी त्रुटियाँ होती है, जितनी भी गड़बड़ होती है, वो सब कुछ गड़बड़ गलतियाँ केवल भगवान विष्णु के नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाती है। ऐसे राक्षस के गुरु शुक्राचार्य राक्षस राज को बता रहे हैं, सोचो आप इस बात को। और कब बता रहे हैं, कलयुग में नहीं बता रहे हैं, सत्ययुग में बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सत्ययुग में भी भगवान का नाम का उच्चारण करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी, त्रेता युग में भी थी, जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया महाभारत के समय तभी भी थी, और आज तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि आज हम तपस्या करने के लायक ही नहीं रह गए, यज्ञ करने के लिए घी नहीं मिलता है, लकड़ी सब गंदी मिलती है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं मंत्र मंत्र बोल के शुद्ध करते हैं उसको, लेकिन फिर भी हम तो मंत्र बोलकर अग्नि उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में क्या होता है, हम लोग यज्ञ करते हैं, हमने भी यहाँ पर भी यज्ञ किया था आपके आंगन में, एंड में क्या बोलते हैं, जैसे ही नया ध्वनि आया सबका ध्यान उस ध्वनि में गया, गया कि नहीं, ये ध्वनि की पावर है, समझो, आप समझने की कोशिश करो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठाक करके वहां पर आ जाएगा, सब लोग पीछे देखेंगे, हमारी कहानी कहाँ कहीं पर भी होगी, लेकिन आपका ध्यान तुरंत बदल जाएगा, ये ध्वनि की पावर है। तो वो क्या बता रहा था आपको मैं, शुक्राचार्य सत्ययुग में बता रहे हैं, हाँ हम लोग यहाँ पर यज्ञ की बात कर रहा था मैं। ये यज्ञ जब समाप्त करने का समय आया तो हमने 2-4 मंत्र बोले, उसको कहते हैं अच्छिद्र वचन। उसमें क्या बोले कि जो भी हमारे हाथ से गलती हो गई है, हमारे उच्चारण में, हमारे ध्यान में, हमारे वस्तु में, हमारे मंत्र में, हमारी क्रिया में, हमारी विधि में, वो सब श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करके हम माफी मांग रहे हैं और वो सब ठीक हो जाए। कृष्ण कार्ष्ण प्रसादतः ऐसा बोलते हैं हम लोग इनमें। श्री हरि श्री कृष्ण का परम भगवान का नाम लेकर सारे दोषों का निवारण हो जाता है। और वो नहीं करेंगे, अपने मंत्र के उच्चारण पर गर्व होगा, आपको ज्ञान पर गर्व होगा, तो फिर उसके गलत परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसा ये ध्वनि है, और जब भगवान का ध्वनि उच्चारण हो रहा है उसमें आप झूम झूम कर भी नाच रहे हो तो आपको केवल आनंद होगा। भगवान के नाम के कीर्तन जब हो रहा है तो उसमें कोई व्यक्ति कितना भी दुखी होगा तो दुखी रह नहीं सकता उसके अंदर। आप देखिए कभी भी हमारे हॉस्पिटल में जब हम कीर्तन करते हैं ना, तो हॉल में कीर्तन करते हैं, कुछ लोग लेट आते हैं, लेकिन लेट आदमी जब अंदर आ रहा है तो वो हंसते हुए अंदर आता है। जब लोगों को देखता है कीर्तन में नाच रहे, वो पुकार रहे भगवान को, तो ऐसे खिला हुआ चेहरे से अंदर आ जाते हैं। वो लेक्चर में शायद ऐसे लटका हुआ चेहरे से आ सकते हैं, लेकिन कीर्तन हो रहा है तो सब लोग हंसते हुए चेहरे से अंदर आएंगे। और कीर्तन में भाग लेंगे अगर आप, तो आपको कितना भी दुख होता रहेगा आज के समय पे, अभी अभी हो रहा होगा, लेकिन कीर्तन में आते ही आपका, कीर्तन के समय के लिए क्यों ना हो, उतने समय के लिए क्यों ना हो, सब दुख दूर चले जाते हैं। दुखे दूरे गेलो चिंता न राहिलो चौ दिखे आनंद देखी, जैसे भगवान का नाम का उच्चारण होता है चारों दिशाओं में केवल आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है, दुख भागते हुए नजर आते हैं। जैसे कोई पेड़ पर रात के समय पे बहुत पंछी बैठते हैं ना, एक फटाका फोड़ दो आप, सारे पंछी उड़ जाते हैं डर के मारे, पहले आपको दिखाई भी नहीं देते, इतने छुपे हुए रहते हैं अंदर पेड़ के अंदर। आवाज करेंगे आप जोर से तो सारे पंछी जहां छुपे हुए वहां से उड़ के पेड़ छोड़कर भाग जाते हैं। ये उदाहरण दिया गया है, हमारे आत्मा के ऊपर बहुत सारे पाप के पंछी बैठे हुए हैं, हमारे आत्मा के ऊपर बहुत सारे पाप के पंछी बैठे हैं, जैसे भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं सब पाप के पंछी उड़ जाते हैं, और करते रहेंगे आप रोज रोज तो वो बैठेंगे नहीं वापस आपके ऊपर, एक बार फटाका फोड़ेंगे तो उड़ जाएंगे, बाद में फटाखा नहीं फूटेंगे, दोबारा आके बैठ जाएंगे सब लोग, अच्छी तरह सो जाएंगे पेड़ के अंदर जाके। इसलिए हम रोज भगवान का नाम कर ले जब जब करते हैं, ताकि सबसे पहले जब लिया था तो सब पंछी उड़ गए थे, अब रोज लेते हैं और दोबारा आके बैठते नहीं उधर, वो तब जाकर हम प्रगति कर सकते हैं। जब पाप का भार खत्म होगा तब आप दौड़ सकते हो। अगर आपके सर पे 100 किलो का वजन दे दिया तो आप भाग सकते हैं क्या? हम बोल रहे भागो भागो भागो, आप सब मार रहे हैं पीछे से, लेकिन आप भाग ही नहीं सकते। लेकिन आपको रियल में भागना है तो क्या करेंगे, 100 किलो का वजन उठा लेंगे, फिर आप भी भागेगा एकदम जोरदार। जब तक पाप का बोझ कंधे पे रहे आपके, तब भगवान की ओर आप दौड़ नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करते ही पाप का बोझ हल्का हो जाता है और आप भगवान की ओर दौड़ सकते हो। वो ध्वनि बड़ा भी होगा, आकाश तक पहुंचता हुआ ध्वनि भी रहेगा, तो भी किसी को कष्ट नहीं होगा उससे। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन क्या करते थे तो स्वर्ग लोग भी लोग सुनते थे उनकी आवाज। अब लगे इतना बड़ा शोर, तो स्वर्ग लोग भी सुनते थे तो यहाँ कितना कान फटते होंगे लोगों के ऐसा हम सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भगवान के नाम की, मैंने पहले क्या बताया था, एक ध्वनि होती है पवित्र ध्वनि, एक होती है अपवित्र ध्वनि। गाली अगर आपके कान में भी धीरे से देंगे ना कोई, तो भी आपको डिस्टर्ब होगा, या तो लाउड स्पीकर में देंगे तो भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो गाली है, अपवित्र ध्वनि है वो। और पवित्र ध्वनि धीरे से भी कहो या जोर से कहो, वो आपको अच्छा ही परिणाम देगी। इसलिए अगर वो यहाँ के कीर्तन की आवाज़ महाप्रभु चैतन्य की स्वर्ग लोक तक पहुँचती होंगी, तो यहाँ के लोगों को भी लाभ हो रहा है और स्वर्ग लोगों को भी लाभ हो रहा है, और कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सब लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं आनंद से। इसलिए हम बोलते हैं आप लोगों को कि भगवान के नाम लेने में आलस्य मत करो, उत्साह से नाम लो भगवान का। जेल में अंदर आदमी बैठा है, उसको बोला जाए अगर कि आप ये 2-3 नाम ले लो, उसको पुकारो, दरवाजा खुल जाएगा। उसको बाहर जाना है लेकिन वो मुंह ही नहीं खुल रहे हैं, दरवाजा खुलेगा क्या? बार बार बोल रहा है मुझे निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे निकालो। बोले निकालो निकालो, बोलने की वजह से वो 3-4 नाम बोलो जो आपको बताया मैं, तो आप दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए। वो नहीं बोल रहे हो मुझे निकालो मुझे निकालो, इतना समय बोल रहे हो, लेकिन जो चाबी दिया था उसको ना नाम की वजह से, वो नहीं बोल रहे। उस तरह से हम लोग सब लोग रो रहे हैं, इतने कष्ट है, ये नहीं है, पैसा नहीं है, वो घर में तकलीफ है, बीवी को बीमारी है, पति बीमार हो गया है, सासू डेथ बेड पर सो रही है, कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, पति ने आत्महत्या कर लिया है, बेटा घर से भाग गया है, बेटी शराब पीती है, इतना सारा कष्ट के लोग रोते हैं। और आप उनको बोलेंगे शनिवार के दिन शाम को 5:13 पे एक नारियल और 6 बेल के पत्ते और 3 गुलाबी रंग के फूल लेके जाकर उस पेड़ की 7 बार प्रदक्षिणा करना, तो जरूर करेंगे आप, लिख लेंगे। क्या बोला सर आपने, कितने फूल बोले आपने? 7 रंग। कौन सा रंग बोला? गुलाबी। अच्छा कभी? शनिवार को। अच्छा कितने बजे? 5:13 पे। कौन से ऋतु में? कौन से महीने में? सब लिख के लेंगे और करेंगे। लेकिन अगर कहेंगे ये कुछ मत करो, खाली भगवान का नाम लो और जहाँ प्रदक्षिणा वहाँ करो, नहीं इतना सिंपल में क्या होता है, कोई दम नहीं उसके अंदर। आप कुछ 50 आइटम लिख के देंगे ना तो बोले दम है उसके अंदर कुछ, लेकिन सत्य यही है 50 आइटम देखिए आपको, अगर सब बहुत बोलेंगे आपको 5:13 का 14 नहीं करना है, 14 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, एक्चुअली केवल भगवान का नाम लो। सारे मुहूर्त, सारे शुभ चीज़ें, सारी पवित्र चीज़ें, सारे अशुभ चीज़ें नष्ट होना, ये सब एक नाम में सम्मिलित है भगवान के। हम लोगों को श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन हमारी भगवान के नाम पर श्रद्धा कम और बाकी सारे विधि विधान पर ज़्यादा श्रद्धा है हमारी। हमारे घर में भी हम ऐसा ही देखते हैं, इतने सारे कष्ट हैं, लेकिन वो सिंपल चीज़ जो है, जो सभी बीमारी की सर्व औषधि है, वो उसको नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए अनंत काल तक जन्म ले लेकर वो यहाँ पर तड़पते रहते हैं, कौन बजा सकता है उनको? जो सर्व औषधि है, सबकी परम औषधि है, उसको छोड़कर बाकी सब औषधि ले रहे हैं। यहाँ फोड़े पर मलम लगा रहे हैं, यहाँ पर फुंकर दे रहे हैं, यहाँ पर पट्टी लगा रहे हैं, बुखार आया तो बुखार की गोली दे रहे हैं, सर दर्द की गोली खा रहे हैं, लेकिन जड़ की बीमारी की दवा नहीं खा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, ये सब खाओ आप, टोसिन खाओ, एविल खाओ, हाँ कप एक्सपेक्टोरेंट खाओ और विटामिन भी खाओ, लेकिन एंटीबायोटिक जरूर खाओ, एंटीबायोटिक से बीमारी खत्म होने वाली है। बाकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक जो है उसको खाओ। वो एंटीबायोटिक हरिनाम है भगवान का, भगवान का नाम है वो, जब उसको खाएंगे तो बाकी फिर करो जो करना है आपको रिचुअल इधर उधर। लेकिन मेन दवा जो है सर्व औषधि, एनेची औषधि मागे नाशो बारो लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। महाप्रभु चैतन्य बोल रहे हैं कि सभी बीमारियों की एक दवा है हरिनाम महामंत्र, जो उसको पुकारेगा वो सब बीमारी से दूर हो जाएगा। और अन्य दवा अलग अलग प्रकार की लेने की जरूरत नहीं है, एक दवा लो जो सब पर काम करेगी और वो है भगवान का नाम। चाहे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, अपना भगवान का नाम जो लो, सबका भगवान तो एक ही है, अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम कृष्ण है, कोई किशन बोलेगा आपको, कोई किशा बोलेगा, है ना? लेकिन आप तो आप ही हो ना, आप बदलते हो किशा बोलने के बाद में। कोई प्रेम से आपको किशा बोलेगा, बचपन का फ्रेंड आपको, मम्मी किशु बोलेगी आपको, या दोस्त कोई और नाम से पुकारेगा, सावतिया बोलेगा, कुछ भी बोलेगा आपको प्रेम से। लेकिन आप बदलते हो क्या उससे? आप तो वही हो, गुलाब कहो, रोज कहो, या रोज कहो या गुलाब कहो या और कुछ भी नाम से पुकारो, गुलाब तो गुलाब ही होता है। पानी को जल बोलो, वाटर बोलो, तोयम बोलो, हाँ नीर बोलो, अलग भाषा में अलग बोलते, लेकिन पानी पीने से वही प्यास बुझती है लोगों की, अलग बुझती नहीं है। नीर बोलने से अलग बुझेगी और तोयम बोलने से अलग बुझेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। उसी तरह से भगवान है, उनको आप जो चाहे नाम से पुकारो, लेकिन उनको पुकारो ताकि वो सुने, और वो सुनते हैं तो आपका कल्याण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।